जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा Thank you. గౌరు ప్రేమానంది హరినామ సంకీర్తన కీ జాయ్ శ్రీల ప్రభుపాద కీ జాయ్ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురోన్మిలితం మేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలై స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌర్భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ ఆజ్ యహాం జులోన్ యాత్రా మహోత్సవం జహాం పాంచ్ దివసీయ కథామృత మహోత్సవ చల్ రహా హై దూసరే దివస్ మే ఆప్కా సబ్కా స్వాగత్ హై ఔర్ ఆజ్ హమారే గౌడియ వైష్ణవం కే లియే బహుత్ హి మహత్వపూర్ణ దివస్ హై శ్రీల రూప్ గోస్వామి పాద్ కా తిరుభావ దివస్ హై క్యూంకి అప్నే జో సంప్రదాయ హై గౌడియ ఇసే రూపానుగ కహతే హై మత్లబ్ ఇస్ సంప్రదాయ మే జో భీ ఆతే హై సబ్ రూప్ అనుగ హై రూప్ గోస్వామి కే అనుసరణ కర్నే వాలే హై అనుగమన కర్నే వాలే హై ఔర్ ఉన్కే శిక్షా కా సబ్కో పాలన కర్నా చాహియే జబ్ హమ్ రూప్ గోస్వామి కీ స్తుతి కర్తే హై శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం చైతన్య మహాప్రభు కే జో మన్ కీ ఇచ్ఛా హై ఔర్ ఉన్కే మన్ కీ ఇచ్ఛా కా జో ఆందోళన హై ఉస్కో ఇస్ సంసార్ పే ఇస్ ధరాతల్ పే జో స్థాపిత్ కర్నే వాలే హై ఓ రూప్ గోస్వామి హై శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూప కదామయం దదాతి స్వపదాంతికం ఎసే శ్రీల రూప్ గోస్వామికి చరణమి హం వందన కర్తే ఉన్సే ప్రార్థనా కర్తే కి ఆప్ హమే ఆప్కే చరణో మే ఆశ్రయ దిజియే తో శ్రీల రూప్ గోస్వామి పూర్వ బంగాల్ మే బ్రాహ్మణ కుల్ మే ఉన్కా జన్మ హువా 1489 చార్ భాయి థే ఏక్ బహన్ థీ ఉస్మే సే శ్రీల సనాతన్ గోస్వామి ఔర్ అనుపమ భగవాన్ కే శుద్ధ కృష్ణ భక్త థే ఔర్ రూప్ ఔర్ సనాతన్ విద్యా మే బడే పారంగత్ థే విద్వాన్ థే ఔర్ శ్రీల రూప్ గోస్వామి पहले से हमेशा वेदों के ऊपर या जो तत्व ज्ञान के ऊपर हमेशा लिखान करते थे, हमेशा किताबें लिखा करते थे, और श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का हमेशा कथा क्या करते थे, सुनते थे, तो उन्हें भागवतम बड़ी रुचि थी। तो इतने वो लोकप्रिय थे समाज में, क्योंकि एक तो विद्वान थे, साथ साथ बहुत ही सेवा भाव था। किसी भी समय किसी भी स्तर पे अगर किसी को मदद करने हैं तो दोनों हमेशा तैयार रहते थे, इसलिए सब लोगों में बड़ी लोकप्रियता थी। और इसका ही कारण था कि मुस्लिम जो राजा था नवाब हुसैन शाह, उसके नज़रों में आ गए। नवाब हुसैन शाह उसका जो गुरु था, उसने उसे पूछा मौलवी से कि मुझे ये राज को अगर अच्छी तरह से बढ़ाना है, उसको लंबे समय तक अगर अच्छी तरह से उसका मुझे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, कैसे मैं करूं? तो उसने सलाह दी कि बंगाल में इसी आपके राष्ट्र में दो बड़े विद्वान ब्राह्मण कुल में युवक हैं, अगर आप उनको आपके सेवा में लेते हैं, आपके साथ लेते हैं, एक तो बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, साथ साथ वो बड़े लोकप्रिय हैं, अगर वो आपके साथ रहते हैं तो सारे समाज को आपके साथ रखना आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर ये बंड जो हमेशा होते रहेंगे, हिंदू समाज को आपको साथ रखना हमेशा के लिए मुश्किल होगा। तो उसने अमर और संतोष इनको बुला लिया और उनसे कहा कि मुझे इस राज को बढ़ाने के लिए आपकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ हो जाओ। और अमर संतोष श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कोई दौल जो ऐश्वर्य है या प्रसिद्धि, इसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो अपने जीवन में आध्यात्म में बड़े मस्त थे। लेकिन जब देखा राजा ने कि मानने वाले नहीं हैं, आसानी से अपने ओर आने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने कहा देखो मैं जानता हूँ कि आपकी आध्यात्म में बड़ी रुचि है, कृष्ण भक्ति के आप बड़े कृष्ण भक्ति में बड़ा लगाव रखते हो, अगर आप मेरे साथ आते हो, मेरे सेवा में रहते हो, तो मैं आपको भाई की तरह रखूँगा, मेरा पूरा साम्राज्य जो है आपको ही संभालना है, लेकिन अगर आप नहीं मानते हो तो आपका जो धर्म का प्रचार है, जो करने वाले हैं प्रचारक है, उनको बड़ी कड़ी शिक्षा दूंगा मैं, आपके जो कुटुंब है उसको पूरा ध्वस्त कर दूंगा, और इस पूरे समाज में जो है अराजकता दहशत हो जाएगी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मना कर सकते हो, नहीं चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ जाइए। तो इच्छा नहीं थी, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के खाली एक प्रचार चलते रहना चाहिए, लोगों को जो आध्यात्म आचरण करने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मान लिया और कई साल तक उसके साथ रहे। अमर फिर वो साकर मलिक हो गए, संतोष दबीर खास हो गए। साकर मलिक जो प्रधानमंत्री थे और दबीर खास जो अर्थ मंत्री थे, और राजा जो है उनके ऊपर पूरा साम्राज्य देकर राज्य सौंपकर हमेशा नए नए देश को लूटने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा बाहर जाता था। कई वर्ष तक ऐसा चलता रहा, भले इस नवाब के सेवा में थे लेकिन उनका मन जो है हमेशा कृष्ण भक्ति में और खास करके चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं इस संसार में हरिनाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, उनके चरणों में हमेशा इनका मन रहा करता था। कई बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पत्र भी लिखे। एक बार तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही एक अलग सा उदाहरण देकर उन्हें कहा, जैसा एक स्त्री एक पैरामोर अपने विवाह के बाह्य किसी पुरुष के साथ जब संबंध रखती है तो अपने घर के कार्य जो है इतनी अच्छी तरह से करती है कि उसे घर वालों को संशय भी नहीं आता कि उसका प्रेम और कहीं है। उस प्रकार से आपके जो भौतिक कार्य है ये इस प्रकार से आप करो कि किसी को संशय ना आ जाए कि आप कृष्ण में इतने लीन हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति आपका जो आकर्षण है वो रहना ही है। इस प्रकार से पत्र व्यवहार होते रहा। और फिर एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए आए वृंदावन जाते समय, तो श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम, ये सब तीनों भाई उनको अपने वेशभूषा बदल कर, बड़े बड़े मंत्री थे लेकिन एक साधारण वेशभूषा करके वहाँ पहुँचे, और उनको मिलने के बाद उन्होंने बड़ी नम्रता से चैतन्य महाप्रभु को मिलने पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मेरे शाश्वत सेवक हो, जन्मों जन्मों से आप मेरे शाश्वत सेवक हो और मुझे पूरी तरह से विश्वास है भगवान कृष्ण तुम्हें ये जो जंजाल है इससे जल्दी बाहर निकालेंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते समय, जब एक बार पुरी से वृंदावन गए, वृंदावन से जब वापस आ रहे थे तो उसमें कई साल बीत गए। उसके बाद रूप गोस्वामी जो नवाब के सेवा में थे कई वर्षों के बाद वो भी वहाँ से निकल चुके थे, और रूप गोस्वामी वृंदावन की ओर जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी आ रहे थे। तो प्रयाग में रूप गोस्वामी रुक गए थे एक दिन के लिए, और उतने में चैतन्य महाप्रभु भी प्रयाग में ही थे, और अचानक से वो देख रूप गोस्वामी देख रहे कि इतनी हरिनाम की गूंज हो रही है, इतना जोर से हरिनाम गूंज रहा है, एक क्या बात है, प्रयाग में ऐसे कैसे हो सकता है। और जब देखा उन्होंने तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ जो संगम है गंगा जमुना सरस्वती, जो तीनों नदी का जो संगम है उससे कभी इतनी बाढ़ नहीं आई थी प्रयाग में, उतनी बाढ़ चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है उससे लोगों की बाढ़ आई थी। इतना सब गली गली में जो हजारों हजारों लोग जो है वहाँ कीर्तन करते जा रहे थे। और जब रूप गोस्वामी वहाँ पहुँचे विनी माधव मंदिर में, तो उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ कीर्तन कर रहे हैं और सबको उत्साह दे रहे कि आप कृष्ण का नाम लो, हरे नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कीर्तन हजारों हजारों लोग ऐसे कीर्तन कर रहे थे, लोटपोट हो रहे थे, कोई वहाँ कीर्तन करते आंसू उनके आ रहे हैं, कोई नाच रहे, कोई लोटपोट हो रहे वहाँ पर, वहाँ धूल में लोटांगन ले रहे हैं। इस प्रकार से उनको देखकर श्री रूप गोस्वामी स्तुति करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरुत्विषे नमः। वहाँ वेणी माधव मंदिर के पास ही चैतन्य महाप्रभु को देखकर रूप गोस्वामी कहते हैं कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम देने के लिए स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और कैसे महावदन्याय, जब कृष्ण स्वयं आए थे तो उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज, आप मुझे शरण आइए, मैं आपको उद्धार करता हूँ, सारे पापों से मुक्त करता हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसको लॉक लगाया था। कृष्ण प्रेम दे रहे थे लेकिन लॉक क्या था, सर्वधर्मान परित्यज। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या करे, नमो महावदन्याय, कोई ऊंच है नीच है स्त्री है पुरुष कोई भी उसमें भेद नहीं है, और कृष्ण प्रेम प्रदायत कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषय नमः। इस तरह से वहाँ स्तुति करते हैं। फिर वहाँ चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद दूसरे दिन जब वह वल्लभ भट्ट इनको मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, तो यमुना पार करके जाते हैं, तो रूप गोस्वामी अनुपम वो भी उनके साथ जाते हैं। और जब वल्लभ भट्ट वहाँ सामने उनके घर के पास रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को देखते, दूर से वो प्रणाम कर दंडवत कर रहे हैं, तो पास जाते हैं उनको मिलने के लिए, तो रूप गोस्वामी भागने लगते हैं कि नहीं नहीं आप हमें स्पर्श मत करो, हम तो बहुत नीच है, हम दूषित है, हम तो आपके यहाँ सेवा में थे, इस प्रकार से उनको मना करते हैं और दूर दूर भागने लगते हैं। तो वल्लभ जो है बार बार उनको जाकर मिलना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको रोकते कि नहीं नहीं उनको जबरदस्ती मत करो, उनको वो चाहते हैं कि इसी तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करे। लेकिन वल्लभ भट्ट कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सदैव हरिनाम करते रहते हैं, महामंत्र का जप करते रहते हैं, और जब हमेशा कोई महामंत्र का जप करते रहता है तो वो ब्राह्मण से भी शुद्ध है पवित्र है, जिनको कैसे हम कह सकते हैं पवित्र अपवित्र है या दूषित है अछूत है, कैसे कह सकते हैं, ये तो भगवान के परम भक्त हैं। तो लेकिन रूप गोस्वामी की नम्रता देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं वहाँ। और फिर रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध घाट यहाँ 10 दिन के लिए उपदेश देते हैं, अलग अलग शास्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरणदास में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके उनका सारे शास्त्रों का सिद्धांत का सार जो है उनके हृदय में प्रकट करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंत्येत सूर्य, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं कृष्ण, वैसे यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनके हृदय में प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु सारा सिद्धांतों का सार शास्त्रों का सार जो है हृदय में प्रकट करते हैं। उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप वृंदावन जाइए, उनसे कहते हैं कि रजे यही रस शास्त्र करह निरूपण लुप्त तीर्थ सर्वतः करह प्रचारण, क्या आप वृंदावन जाओ और वहाँ जो दिव्य शास्त्र है उसका प्रचार करो, उसका लिखाण करो, और जो लुप्त जो लीला स्थली है उसका भी पुनर्निर्माण करो, और भगवान कृष्ण के सेवा की स्थापना करो, कैसे सेवा करना चाहिए है उसका स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए उसकी स्थापना करो। तो यहाँ जब श्री रूप गोस्वामी वृंदावन पहुँचते हैं, उसके बाद मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था महाराज का वृंदावन यात्रा का रूप गोस्वामी का जो चर्चा किए है, इतना महाराज जब वर्णन करते हैं इतना विस्तार में इतना प्रेम पूर्ण है, मैं सोचा इसके ऊपर कितने दिन तक तो सेमिनार चलने चाहिए और हमें गौराम प्रभु से सुनना चाहिए तो लेकिन झूलन यात्रा का भी बोलना है तो रूप गोस्वामी बारे में बोलना है, तो मैं सोचा थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि महाराज स्वयं कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी ये भगवत धाम से आए हैं, गोलोक से आए हैं, जो सखी है उनके साथ जो मंजरी है ये रूप मंजरी है, जो गोलोक धाम से आए हैं उनके बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं, हमारी क्या पात्रता है। जैसे हमारे दामोदर प्रभु सुबह सुंदर श्लोक वर्णन कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मूर्ख नीचे शुद्र मोहि विषय लालस वैष्णव आज्ञा बले करे एते का साहस। तो मैंने खास कर श्लोक लिख लिया कि मुझे बोला कि आज शाम को बोलना है, ये बहुत जरूरी है कि ये भाव कि मूर्ख नीचे शूद्र, हम तो अभी इस एक विषय लालसा में अभी भी काम क्रोध लोभ इसमें अभी तक हम लोग जकड़े हुए हैं, लेकिन जब ये आसन के ऊपर बैठते हैं तो खाली सबको दिखना चले चाहिए, इसलिए आसन ऊपर रखते थोड़ा इसलिए मुझे तो लगता है। लेकिन वैष्णव आज्ञा बले, जब वैष्णव की आज्ञा आती है तो एक बल आता है उससे, और उसके वो बल के स्तर पे हम लोग कुछ दो शब्द बोल सकते हैं, प्रवचन। जब भी मैं बोलता एटलीस्ट, मैं तो कई सारे भक्तों का प्रवचन सुनता, प्रवचन जो उन्होंने बोला उसको रिपीट करना है तो यहाँ वृंदावन में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी वृंदावन पहुँचते हैं, उस समय सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुँचते हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के मिलने के लिए वाराणसी आना चाहते हैं, लेकिन तब तक 2 महीने की शिक्षा लेकर सनातन गोस्वामी वृंदावन जाने लगते हैं, और उनको लगता हम रस्से में कहीं मिलेंगे, लेकिन तब मोबाइल्स वगैरह नहीं थे तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो सनातन गोस्वामी एक रोड से चले गए, रूप गोस्वामी एक रोड से आ गए, और फिर वापस उनको लगा चलो सनातन गोस्वामी ने नहीं मिले, कम से कम बंगाल में अद्वैताचार्य सेवा ठाकुर ये सब लोग मिलेंगे, उनके साथ हम जगन्नाथपुर जाएंगे। लेकिन जब तक पहुँचे, पहुँचने से पहले अनुपम उनके जो छोटे भाई थे उनका देहांत हुआ, तो सारे क्रियाकर्म करते उनको थोड़ा देर भी हो गई। तो बंगाल जब पहुँचे तो सारे भक्त जो चातुर्मास के लिए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुर जाते थे वो भी निकल चुके थे, तो रूप गोस्वामी फिर वापस अकेले निकलना पड़ा। और वृंदावन से निकलते समय उन्होंने एक सुंदर ड्रामा लिखना चाहा, नाटिका लिखना चाहे, तो उसमें वृंदावन लीला द्वारका लीला साथ लिखना चाहते थे। और जब वो वापस बंगाल से निकले पुरी के लिए तो उसमें उड़ीसा पहुंचते समय वहाँ एक गांव में रुके सत्यभामापुर जो गांव था वहाँ रुके थे, तो वहाँ उन्होंने रात को सोते समय अचानक उन्होंने उनके स्वप्न एक दिव्य एक देवी जो है उनके स्वप्न प्रकट होती है, और वो कहती है कि आप जो वृंदावन लीला और द्वारका लीला एक साथ लिखना चाहते हैं नाटिका में, उसको अलग अलग करो, वृंदावन लीला अलग से लिखो और द्वारका लीला अलग से लिखो, तो उससे हमें खुशी होगी और साथ साथ मेरे आशीर्वाद भी आपके साथ रहेंगे, और इससे आपको बहुत बड़ा बहुत यश मिलेगा। इस तरह से उनको आशीर्वाद देते हैं। जब रूप गोस्वामी उठते हैं तो जब वो चिंतन करने लगते हैं तो देखते हैं कि वो तो स्वयं द्वारका की महारानी सत्यवामा थी, तो उन्होंने खास उनको आकर कहा कि आप ये लीला जो अलग अलग लिखो। और वापस चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो सारे भक्तों ने वहां उनका बड़ा स्वागत किया, और चैतन्य महाप्रभु जब रोज उनको मिलने आते, हरिदास ठाकुर के साथ जब रूप गोस्वामी रहते तो रोज उनको मिलने आते थे। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से जो सत्य भामा ने कहा वही चैतन्य महाप्रभु वापस रिपीट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण को वृंदावन के बाहर लेने आने की कोशिश मत करो, क्योंकि वासुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण दोनों अलग हैं। नंदनंद कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ते नहीं, इसलिए आप जो है उन्हें बाहर मत ले जाने की कोशिश करो। और जब चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे तो रोज कुछ ना कुछ लीला होती थी। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कोई ग्रंथ लिख रहे थे तो देखते उनका जो हस्ताक्षर है इतना सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से कहते कि ये तो इतना सुंदर हस्ताक्षर है जैसे कोई मोतियों की माला है, इतना सुंदर उनका हस्तलिखान था। और जब चैतन्य महाप्रभु देखते कि वो क्या लिख रहे हैं तो उन्होंने देखा रूप गोस्वामी वहाँ हरिनाम का गुणगान कर रहे थे, जिसमें वो जब पढ़ा उन्होंने तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम से गदगद होने लगे, भाव विभोर होने लगे, और जब हरिदास ठाकुर इन्होंने पढ़ा वो तो आनंद से नाचने लगे, इतना सुंदर वो हरिनाम का गुणगान था, वर्णन था। क्या लिखते हैं, तुंदे टाण विनी रति वितनुते तुंडावली लब्ध है, कर्ण क्रोड़ कदम विनी घटयते कर्ण वृद्धेभ्य स्पृहाम, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, नो जाने जनिता क्रिया निर्मृत कृष्णेति वर्णत्वय। को लिखते हैं कि कृष्ण ये जो अक्षर है, दो अक्षर है, इसमें इतना अमृत है कि जब मैं उनको मुख से वर्णन करता हूँ, बोलता हूँ, तो ऐसे लगता है कि लाखों लाखों मुख मेरे पास होने चाहिए, तभी उसका स्वाद मैं ले पाऊँ। इतना स्वादिष्ट है कि महिमा ने हम लोग पूरी कर सकते। और जब वो कान में जाता है हरिनाम, कृष्ण जब कान में प्रवेश करते हैं तो कर्ण क्रोड़ कदंबिनी, इतने करोड़ करोड़ कर्ण होने चाहिए, कान होने चाहिए सुनने के लिए, तभी वो कृष्ण नाम का हम आस्वाद ले सकते हैं। और फिर जब वो कर्ण से हृदय में प्रवेश करता है ये कृष्ण नाम, तो जो हृदय में प्रवेश करने से ये पूरी तरह से मन और इंद्रियों को जीत लेता है, हृदय में नृत्य करने लगता है इस तरह से। तो बहुत ही चैतन्य महाप्रभु प्रभु उनको देखकर, ये लिखान देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। इस तरह से कई सारी लीला जो हम श्रील रूप गोस्वामी के बारे में सुन सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और आज श्रील रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, तो हम उनसे से रूपा अनुग्रह कहते हैं, तो हमें उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्होंने जो दिए गए उपदेश है हम किस तरह से उसको पालन कर सकें और उसको अपने जीवन में उतार कर जो श्रील प्रभुपाद का आंदोलन है उसे उसमें सेवा करने के लिए हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रचार पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए जब जाना था, तो दामोदर राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी की जो समाधि मंदिर है उसे देखते देखते जो है भागवत की कमेंट्री लिखा करते थे। आज श्रील प्रभुपाद के वहाँ वो रूप गोस्वामी की जो समाधि है उसको देख कर मुझे प्रोत्साहन प्रेरणा मिलती थी। तो हमें बहुत ही हमारा भाग्य है कि हम ऐसे संप्रदाय में हैं कि जहाँ जो सखी मंजरी जो है हमारे आचार्य हैं। तो आज हम यहाँ झूलन यात्रा के लिए भी यहाँ आए हैं। तो भगवान की जो लीला होती है झूलन लीला है, और जो भगवान इस संसार में आते हैं तो मुख्य उद्देश्य उनका वही होता है कि भक्तों के साथ आदान प्रदान करना। क्योंकि भगवद्गीता में जब भगवान कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य धर्म की स्थापना करनी है या परित्राणाय सौदनाम गुणाशाय दुष्कृताम, ये सारे कार्य जो है भगवान और किससे करा सकते हैं। परित्राणाय साधुना भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान का जो हरिनाम जो है लीला है, हम देखते हैं कि कितने सारे भक्तों का उद्धार हरिनाम से हुआ है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, द्रौपदी, नाम लेकर उन्होंने उद्धार किया अपना। अगर जो दुष्कृताम उनका सहार करने के लिए आना है तो खाली एक सुनामी आ जाए, कोरोना आ जाए, नष्ट हो सकता है, हजारों लाखों में जा सकते हैं, या कौन को हार्ट अटैक आ जाए, तो भगवान को खुद आने की आवश्यकता नहीं उसके लिए। लेकिन भगवान खुद आते हैं उसका मूल कारण जो है कि भक्तों के साथ आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अनुग्रह है भक्तानाम, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा देने के लिए भगवान आते हैं। तो जब भगवान लीला करते हैं, एक तो जो निष्ठा से भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, और जिन जिनकी श्रद्धा नहीं है उनको लीला द्वारे इन किन प्रकार आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से जे लीला और जीव, भगवान जब कार्य करते वो लीला होती है, और जब जीव कार्य करता है तो कर्म बंधन होता है। कभी जीव को भी लगता है कि ये भी मेरी लीला है। जब जीव कुछ करता है इस संसार में तो लोग टाइम पास करते हैं, और भगवान करते तो पांच टाइम होता है। तो क्योंकि जीव जो है अपनी अपूर्ण इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है, उसे कर्म कहते हैं। कोई अतृप्त इच्छा है उसको पूरी करने के लिए कर्म करता है। इस तरह से कई बार वो कर्म करते रहता है, करता है, कई जन्मों तक कर्म करते रहता है, उसमें क्या कर्म बंधन निर्माण होता है। वो उसका जीव का एक कर्म बंधन होता है, कर्म होता है। लेकिन जब भगवान जो है, जीव क्यों करता है, क्योंकि अतृप्त इच्छा है। लेकिन भगवान क्या है, आत्माराम है, आत्मकाम है, उनको कोई अतृप्त इच्छा नहीं है। और जब इच्छा होती भी है, भगवान की इतनी शक्ति है, शक्तियाँ हैं कि भगवान इच्छा करते ही सारी इच्छा कार्य कर देती है। हम जब इच्छा करते हैं तो जीव को खुद इच्छा पूरी करने के लिए जाना पड़ता है, उसको कुछ निर्माण करना पड़ता है। लेकिन भगवान इच्छा करते हैं तुरंत इनकी शक्तियाँ इच्छा पूरी कर देती है, तो उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है उनकी कोई, क्योंकि वो आत्माराम है, आप्तकाम है, इसलिए उनकी कोई अपूर्ण इच्छा भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं, इसलिए उनके जो कार्य है वो लीला है, वो कर्म नहीं है। कर्म बंधन में उसकी वजह से वो फंसते नहीं है। तो ये जो झूला लीला कल हम माधव गोपाल प्रभु ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर दिया, पूरा किचन से लेकर पूरे शुद्ध भक्ति तक वो ले गए, आगरा का पेठा से लेकर पूरे शुद्ध भक्ति तक लेके गए। तो मेरे लिए बोले कि प्रभु जी आप कल लीला बताओ थोड़ा, तो मैं सिद्धांत बता दे रहा हूँ सब, मतलब मेरे लिए बहुत आसान है वो। तो उन्होंने तो शुरुआत कर दिया उन्होंने कि झूलन जो है सावन मास में होता है, श्रावण महीने में होता है, एकादशी से पूर्णिमा तक के पाँच दिन का ये झूलन यात्रा होती है। और वृंदावन के हर एक मंदिर में अलग अलग प्रकार के झूलन बनाते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई सजेला होता है, कोई अलग 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 प्रकार के। तो भगवान ये भाव के प्रेमी हैं, भाव के भूखे हैं, और इसलिए खास करके श्रावण में ये जो होता है, क्योंकि सावन मास में ये जो हरियाली तीज होती है, और जो वहाँ विवाह होते हैं, उसके बाद जो अपने सास क्या बोलते, सासर क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे, ससुराल, सॉरी ससुराल, मेरे लिए हिंदी में लेक्चर भी थोड़ा तपस्या होती है, एक तो मराठी है इंग्लिश तो, लेकिन वैष्णव के लिए थोड़ा तपस्या लेना अच्छा है। तो यहाँ राधा रानी का विवाह होता है जावट में, उनकी सास जटिला, ननंद कुटिला, और अभिमन्यु के पिता रुद्र गोप, वो नाम के अनुसार क्रोधित होते हैं, हमेशा क्रोध करते रहते हैं, और अभिमन्यु भी उनके जैसा ही थोड़ा बहुत क्रोधी करते रहता है। तो राधा रानी के लिए उस घर में रहना जहाँ वो ब्रज के वन से, जहाँ कृष्ण लीला है, नंद वहाँ बरसाना में ऋषभानु पिता है, कृतिदा माता है, इनके इतने प्यार से पल भरकर आई थी, तो यहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि ये घर नहीं वन है जहाँ खाली हिंस्र प्राणी रहते हैं। ऐसे है जेटीला कुटेला इसके, अभी हम लोग खासकर माताओं के लिए जरूरी नहीं कि हम पीछे अपने घर में चले जाएं सास ननंद के पास। तो यहाँ राधा रानी जब वहाँ देखते हैं कि 11 महीने हो गए और 1 महीना जो साल में मैके जाना है, तो 11 महीने जो है इतनी तपस्या होती, इतने कष्ट सहन करते, हर चीज़ के लिए हाँ जेठीला उनको डांटते रहती है, ये पानी क्यों नहीं डाला, ये साफ क्यों नहीं किया, हर चीज़ में वो कितना भी अच्छा करो तो डांट पड़ती है। तो कई बार उनको दुख होता है और सोचते हैं कि मैं कहाँ पर आ गए। एक तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, यहाँ ऋषभानु महाराज का दर्शन नहीं हो रहा है, जो अनंग गोपी है, अनंग मंजरी उनकी छोटी बहन है, उसका दर्शन नहीं होता है, सुदामा बोल के बड़े भाई उनका दर्शन नहीं होता, बड़े दुख में वो रोती रहते थे राधा रानी। और फिर अपनी जो सखियाँ जो है, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, चंपकलाल, इनको भी बहुत मिस करते थे, क्या है ये सब लोग कोई मिलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और इतना आंसू बहते थे, इतने रोते थे कि तालाब जम जाता था, तालाब भर जाता था। और लेकिन वो विरह का ताप इतना होता था कि विरह के ताप से वो तालाब तुरंत सूख जाता था, इतना वो वृंदावन का जो तापमान है वो भी बढ़ जाता था, राधा रानी का इतना ताप बढ़ जाता है, विरह का ताप, ये सारे ऋषभानु महाराज, कृतिदा देवी, भगवान कृष्ण के लिए इतना विरह होता था उनके मन में, इतने ताप से पूरा बाहर का भी तापमान जो है बढ़ जाता था। इस तरह से लेकिन उनके तापमान जो बाष्प पानी जो है वो बाष्प हो जाता था, जो मेघ है वो भी, उनको भी दुख होता था कि राधा रानी इतनी रो रही है, इतना उसे दुख हो रहा है, वो भी अश्रु जो है उनके भी आंखों से आंसू आने लगते थे, वही जो है फिर वर्षा ऋतु शुरू हो जाते थे। तो वहाँ श्रावण में वर्षा ऋतु शुरू हो जाते हैं और फिर वर्षा ऋतु में तृतीया के उसमें जो समय हरियाली तीज आती है, और हरियाली तीज में खास विशेष एक चीज़ वहाँ होती है कि जितनी वहाँ पर विवाहित होकर गए हैं अपने ससुराल, सारे उनके जो मायके वाले जो उनको लेने के लिए आ जाते हैं, तो बड़े सारी जो स्त्रियाँ हैं खासकर नवविवाहिता जो है जो शादी करके वहाँ गई है, वो बड़े खुशी में रहती है कि अभी कोई तो आएगा मुझे लेने के लिए। लेकिन राधा रानी देखते हैं हरियाली तीज गए, कोई आया नहीं, बाजू के गांव से ललिता के लिए आए, विशा के लिए आए, इंदुलेखा के लिए, सब सब जो सखियाँ जो आजू बाजू के गांव में दे गए थे, तो सब लोग के भाई आए हैं, सबको ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे लिए अभी तक श्रीदामा श्रीदामा क्यों नहीं आए हैं, तो बड़े दुख से वो रो रही हैं। और ऐसा देखते हैं बाहर जाकर देखते हैं कि अभी श्रीदामा आएगा, अभी आएगा, लेकिन श्रीदामा अभी तक पहुंचा नहीं है। और अचानक एक दिन पूर्णिमा का दिन था, उस दिन वो देखती है कि बाहर जाकर देखते कि श्रीदामा आया है, ऐसे सुंदर बैलगाड़ी है, उसमें श्रीदामा, खास करके जो बैल है उसके पर झूल लगे हैं, उसके जो खुर है उसमें चांदी के खुर लगे हैं, जो उनके सींग है उसमें सोने की छिमपी लगी है, इस तरह सुंदर ऐसा बैलों को सजा कर, अभी भी कुछ बड़े बड़े जो वहाँ रईस लोग हैं उनके घर में ऐसे गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, जो खास करके लड़कियों का अपने मायके वापस लेने आने के लिए वो गाड़ी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से वो वहाँ सुदामा को देखकर, जैसे राधा रानी ने देखा सुदामा को, तुरंत जाकर उसको गले पड़ गए और रोने लगी। इतनी देर क्यों दी, सारी सखियाँ जो है चली गई, और कितने दिन आपने लगा दिए, क्यों इतनी देर कर दी। तो सुदामा कहते, अरे अगर मैं तुरंत आता और कुछ ले नहीं आता साथ में, तो ये जेठीला आपको छोड़ती नहीं, क्योंकि जेठीला के लिए बहुत सारे उपहार मैं लेने के लिए रुक गया था। अगर ले उपहार नहीं ले आता, भेंट नहीं ले आता, तो छोड़ते नहीं आपको, इसलिए भेंट जुगाड़ करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ा मुझे। तो श्रीदामा जेठीला को कहते कि मैं राधा रानी को लेने के लिए आ गया हूँ। बोलते, ऐसे कैसे ले जा सकते हो, अरे इतने सारे काम पड़े हैं, आप नहीं ले जा सकते। तो श्रीदामा कहते कि देखो, आप कितने सारे उपहार आपके लिए लेके आ गया हूँ, हजारों गाय ले आया हूँ, इतने सारे नौकर चाकर सब लेकर आया हूँ, और इतने सारे वस्त्र है, अलग अलग अलंकार लेकर आया हूँ। तो सब देखकर जो, हाँ ठीक है, बाजू के रूप में रख दो, हाँ राधा ने आप जाओ, जाओ न, जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से उनको भेज देती है। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और राधा रानी जैसे रथ में बैठते हैं बैलगाड़ी में, उनके साथ उनके जो 6 सखियाँ जो हैं, खास करके वो 6 सखियाँ भी बैठ जाती हैं। वही 6 सखियाँ हैं जो हमारे षड़ गोस्वामी हैं। सारे सखियों के लिए अलग अलग रथ है, वो अपने अपने रथ में चले जाते हैं। लेकिन ये जो सखियाँ जो उनके साथ दासियाँ हैं, वो दासियाँ जो है हमेशा राधा रानी के साथ ही हो जाती है, राधा रानी के साथ ही हमेशा रहती है। और वही जो दासियाँ जो है हमारे षड़ गोस्वामी हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी वहाँ जाती है और इतनी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। बरसाना में पहुँचते ही तुरंत कृतदा माता को मिलती है, गले लगती है, रोने लगती है और आंसू निकलते हैं, दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन एक दुख के आंसू है और एक सुख के आंसू है। सुख के आंसू क्यों है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, बरसाना में हूँ, अभी तो सखियों से मिलूंगी, माता पिता के घर होंगी, और 1 महीने के लिए जो है आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। और दुख के आंसू क्यों है, क्योंकि 1 महीने के बाद वापस जावर जाना पड़ेगा जटिकला जटिला के पास। तो वापस वो खाली वो जो भाव है, वो खाली वो विचार ही उसको इतना दुख देता है राधा रानी को। और फिर वहाँ वन में तो वहाँ बरसाने में राधा रानी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ तो कोई शंका नहीं, वहाँ जेटिला कुटिला तो हर चीज़ के लिए शंका लेते। खिड़की में भी देखा तो क्या कोई आया क्या वहाँ पे, तो हमेशा डांटते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई शंका नहीं है, या कोई वन में जाने के लिए रोकने वाला नहीं है। माता कीर्तिदास से कहते कि क्या वन में जाऊँ, हाँ जाओ जाओ, अपनी सखियाँ आई होगी। जैसे राधा रानी भागती है और चले जाते हैं। और वहाँ रुंधा देवी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि राधा रानी अभी आई है, 11 महीने के बाद राधा रानी अब अभी बरसाना में है, इतना उसको आनंद देना है। तो सारे 12 वनों में उसको रुंधा देवी क्या करती है, झूले सजा कर रखती है। 12 वन जहाँ पर भी राधा रानी की जाने की इच्छा है, वहाँ जाकर वो झूला का आनंद ले सकते हैं। और झूले जो है हमेशा कदम के वृक्ष के ऊपर बांधते हैं, तमाल वृक्ष पे नहीं। तमाल वृक्ष पे अगर झूला बांधो तो तुरंत गिर जाएगा, टूट जाएगा। कि राधा रानी जो है ये प्रेम स्वरूपा है, और कदम्ब जो है राधा रानी का स्वरूप है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो प्रेम स्वरूप की जो शक्ति है वो झूला को तोल सकते हैं, ये तमाल जो है वो झेल नहीं सकता। इसलिए कदम के ऊपर हमेशा झूला जो है बांधते हैं। इतने विविध प्रकार के झूले बनाते हैं, सुंदर अलग अलग प्रकार के आसन वहाँ पर होते हैं, अलग अलग क्रीपर्स लगाते हैं, फलों से सजाते हैं, पुष्प और अलग रंग बिरंग माला से सजाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भक्त भी अलग अलग रोज सुंदर दृश्य करते हैं, मधु माधव प्रभु उनका टीम है, हमारे श्री गुरु चरण प्रभु तो एक सप्ताह से पूरा ऑर्गेनिक झूला बना रहे हैं तो बहुत ही भक्त इतने सुंदर व्यवस्था करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। तो यहाँ वहाँ पे जो है वृंदावन में हर एक चिन्मय है, हर एक चीज़ जो है इतने पूर्ण रूप से भगवत भावना में है कि हर पक्षी है, प्राणी है, घास है, हर एक जो है राधा कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं। इसलिए जब वहाँ का जो कौवा है वो काँ काँ नहीं करता है, वो क्या कहता है रा 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 करता है, और जो कोयल है वो कुई कुई नहीं, कैसा करते है? मुझे नहीं आता कोयल कैसा आवाज करता है, कू कू हाँ। लेकिन वहाँ जो वृंदावन में कोयल है वो धे 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 आता है, तो इस तरह से वो क्या होता है राधे राधे, तो ऐसा हो राधे राधे राधे। और जब मोर है वो क्या गाता है के का, साधारण मोर कैसे गाता है म्याओ किसको आता है यस हाँ बराबर रुंदन प्रसाद प्रभु को आता है तो के मतलब एक कौन पुरुष है और का एक कौन स्त्री है तो वो कहते हैं कि ये कौन पुरुष है जो ऋषभानी नंदिनी कीर्तना कीर्तिदा नंदिनी को आकर्षित करता है, कि कौन पुरुष है वो, और का कौन स्त्री है जो कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं उनको आकर्षित करे, कौन है का के का। इस प्रकार से वहाँ इतना नृत्य और वाद बजाते हैं, नृत्य करते हैं, सब पंछी पशु सब नृत्य करते हैं और मंद मंद हवा चलती है। तो वहाँ जो झूला होता है उसका एक विशेषता होती है, घर में भी अगर झूला हो आप कभी और बैठो झूले पे, उसकी विशेषता क्या होती है, कभी बैठे हैं कोई झूले पे, क्या होता है टेंशन दूर होता है देखो आदमी अगर कभी बड़े बड़े बंगले बनते हैं तो खास करके झूला रखते हैं, टेंशन आ जाके आने के बाद वो जाके उधर बैठ जाते हैं हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी प्रेम से भी बैठते हैं, वो बात अलग है लेकिन कभी आदमी अगर झूले पे बैठ जाए और जब थोड़ा झूलने लगता है तो जो अगर तनाव है वो शांत होता है। मैंने ट्राई किया नहीं है जो सुना हो बोल रहा हूँ ये सब आपको अनुभव करने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं पहले बोल दिया मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो यहाँ रुंधा देवी सोचती है कि राधा रानी 11 महीने इतना ससुराल से इतनी त्रस्त होकर आई है, इतना दुख झेल कर आई है, अभी उसको इतना हम झुलाएंगे, इतना अलग अलग प्रकार से झूला बनाएंगे और इतना उसको झुलाकर इतना आनंद देंगे कि वो ससुराल भूल जाएगी ससुराल का जो भी वो टेंशन लेकर आई थी, वो दुख लेकर आई थी, वो पूरा दुख भूल जाएगी, इतना हम उसको झूला देकर आनंद देंगे। इस प्रकार से जो जो उत्सव है ब्रजवासियों के लिए बड़ा सुखकारक है, आनंददायक है, क्यों, ये उत्सव का विशेष महत्व है राधा रानी को सुख देना, क्योंकि वो वहाँ जावर से इतना दुख भोग कर आई है तो उसको आनंद देना ये सबका उद्देश्य है, खुशी देने के लिए उत्सव मनाते हैं। तो कभी जब झूला जब झूलने लगता है, कभी कृष्ण झूला पर बैठते हैं और राधा रानी झूला देती है, और कभी राधा रानी बैठते हैं, कृष्ण उसको झुला देते हैं, और कभी कभी दोनों बैठते हैं और सखियाँ जो है उनको झुला देते हैं, और कभी कभी सखियाँ बैठती है फिर आगे राधा रानी रहते हैं, पीछे कृष्ण रहते हैं, कृष्ण धक्का मारते फिर आगे से राधा रानी। इस प्रकार से अलग अलग जो वहाँ पर झूले पर बैठते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और कभी कभी अब झूला देते समय राधा रानी के जो वस्त्र है वो भी हवा में उड़ने लगते हैं, और उनकी मोती की जो माला है वो भी उड़ने लगते हैं, और कभी कभी माला जो है किसी के हाथ में अटकती है, वस्त्र में अटकती है, तो सारी माला जो मोती जो नीचे गिर जाते हैं, और सारी सखियाँ जो है मोती को उठाते और कहते हैं अरे हाँ ये राधा रानी का प्रसाद है, तो अपने अपने जेब में डालकर उसको आनंद से संभाल कर रखते हैं, और फिर उसमें भोग आते हैं, अलग अलग पेय लाकर उनको पिलाते हैं, कोई प्रसाद लाकर खिलाते हैं, और फिर अंतिम जो पाड़ा होता है वो बड़ा विशेष होता है। क्या होता है उसमें? युद्ध, प्रेम युद्ध होता है। और प्रेम युद्ध में क्या होता है? युद्ध में क्या होता है? बॉम्ब और बंदूक। तो उनके पास भी बॉम्ब और बंदूक होता है। बॉम्ब जो सखियाँ होते हैं उनके कमर में जो है वो अलग अलग कलर्स के बॉस अलग अलग वस्त्र में वो बांध कर रखते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं दूर जाकर जो है राधा कृष्ण के ऊपर वो फेंकते हैं कलर्स के जो बॉल्स है वो फेंकते हैं, कलर्स फेंकते हैं। उसमें क्या होता है लेकिन जो दासिया जो मंजरी है वो क्या करते हैं बीच में उड़ी मारते हैं, जंप लगाती है, और वो उससे राधा कृष्ण के ऊपर कलर नहीं गिरना चाहिए इसलिए वो सारा कलर जो अपने ऊपर लेती है, अपने ऊपर पूरा घाव ले लेते हैं। फिर वह इस प्रकार से और राधा रानी जो देखती है कि अरे उसने कलर को बचा लिया अपने पे आने से, तो तुरंत ताले पर वाह वाह शाबाश शाबाश बहुत अच्छा काम किया, और उसको उत्साह देती है। फिर बाद में जो मंजरी जो कभी कभी उसका अगर छू जाता है थोड़ा सा जंप तो क्या होता है वो लगकर वो कृष्ण के ऊपर जाता है वो जो कलर जो पूरा कृष्ण और कृष्ण का चेहरा जो पूरा कलर से भर जाता है, तो सारी सखियाँ राधा रानी एकदम हंसने लगते हैं और वहाँ पर हंसी मजाक जो शुरू हो जाता है। बोलते ये भी अच्छा ही हुआ क्योंकि आपने थोड़ा चूक दिया इसलिए अभी हमको इतना हंसने मिला, ये भी अच्छा ही है। और फिर इस तरह से सारी मंजरिया जो है वो देखती है कृष्ण जो है सखिया हंस रही है राधा रानी हंस रहे देखकर वो झूला से उतर जाते हैं और क्या करते हैं वो पिचकारी लेते बंदूक लेते हैं और पिचकारी से सारे संख्यों के ऊपर कलर्स जब उड़ाने लगते हैं तो उसमें फिर वापस मंजर ऊपर आती है, जम लगाती है और कलर्स को वो झेलने लगती है। और इस तरह से वो जितना सबसे ज़्यादा जो घायल हो जाते हैं कलर जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे लेते हैं उसको परमवीर चक्र दिया जाता है उनको बख्शीश देते, खास करके राधा रानी की विशेष कृपा जो है उनको प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो वृंदावन में झूलन यात्रा जो है इतना प्रेम पूर्ण अति पवित्र अति पवित्र गुप्त ऐसा ये उत्सव जो है वहाँ पर होता है, और ये इसका वर्णन जो है आनंद वृंदावन चप्पू में श्री कवि कर्णपुर सुंदर इसका ये वर्णन करते हैं झूलन यात्रा का। और हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसे लीलाओं का श्रवण कर पाते हैं कि ताकि ये तो हम इस अनर्थ भरे शरीर से अपने भावना से इसको अनुभव तो नहीं कर सकते या इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो पवित्र लीलाएं हैं उसको सुनकर हम अपना शुद्धिकरण तो कर सकते हैं, इसलिए लीलाओं को सुनना चाहिए। और ये जो प्रभुपाद का आंदोलन है और वैष्णव के सेवा में हम रहकर जो हमें चांस मिला है यहाँ आकर सेवा करने का उसका लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोपहर को मैं आश्रम में जस भक्तों से पूछ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि जब हम हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जीवा पर कृष्ण होते हैं और हम जब जप करते हैं तो कृष्ण झूलते हैं। तो झूला जब देते हैं हम, सोना नहीं चाहिए, बराबर ना? अगर तो यहाँ पर जब झूलते हैं तो वहाँ वृंदावन में तो झूला जो है आगे पीछे होता है, लेफ्ट राइट भी होता है और गोल भी घूमता है, हम यहाँ नहीं कर सकते, आगे पीछे करना चाहिए। लेकिन जब हम जीवा पे कृष्ण झूलते हैं तो झूला जैसे समय सोना नहीं चाहिए, तो जागते हुए हमें कृष्ण को झूलाते रहना चाहिए, झूला करते रहना चाहिए। तो श्री चैतन्य कृपा प्रभु ने बहुत ही सुंदर मुझे दोपहर को बताया था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से जप करें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूप गोस्वामी पाद की, झूलन यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्ण। तो अगला कार्यक्रम इस प्रकार से कि रूप गोस्वामी का स्थिरोभव दिन हेदम यहाँ पर अभी जय अनिलो प्रेम धन की प्रार्थना यहाँ पर गाएंगे। तो जहाँ पर आप बैठे उधर ही आपको थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ जाना है और फिर हम रूप गोस्वामी का आरती भी करेंगे। तो आइए हम सब रूप रघुनाथ प्रभु जिन्होंने इतना मधुर लीला हमको यहाँ पर आज बताया और सबके मन को बहलाया, तो इनको भी हम धन्यवाद देंगे। तीन बार जोर से हरी वो हरी वो हरी वो।
कम कर देंगे ना।